क्या अनुवाद की एक छोटी सी गलती सदियों की धार्मिक मान्यताओं को पूरी तरह से बदल सकती है?
ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल है,
है ना? मतलब सोचिए, कोई विद्वान किसी पुरानी भाषा को ठीक से न समझ पाए और बस उसकी वजह से पूरी मानवता पर जन्मजात पाप का एक ठप्पा लग जाए।
हाँ, और इतिहास में ऐसा हुआ भी है।
बिल्कुल। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम स्रोत सामग्री के आधार पर, जो कि डॉक्टर क्रेग कीनर का रोमियो की किताब के अध्याय 5 और 6 पर दिया गया लेक्चर है, हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति की पुरानी पहचान हमेशा के लिए खत्म होती है और एक नई पहचान शुरू होती है।
सही कहा। और इस पूरी चर्चा का केंद्र वास्तव में इतिहास की वो एक अनुवाद वाली गलती है जो ऑगस्टीन से हुई थी। मतलब ऑगस्टीन को तो आप जानते ही होंगे, ईसाई इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक माना जाता है उन्हें।
हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है।
लेकिन उनके साथ एक बड़ी समस्या थी, उन्हें ग्रीक भाषा नहीं आती थी।
अच्छा, एक इतने बड़े विद्वान को ग्रीक नहीं आती थी?
बिल्कुल नहीं, वे पूरी तरह से लैटिन अनुवाद पर निर्भर थे। तो जब उन्होंने रोमियो 5:12 को लैटिन में पढ़ा तो उसमें लिखा था इनको, जिसका अर्थ उन्होंने निकाला जिसमें।
जिसमें? ओ, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ
मतलब ऑगस्टीन ने इसका ये अर्थ निकाला कि जब आदम ने पाप किया तो हम सब भी आदम के अंदर थे, और इसीलिए आदम का जो दोष या जो अपराध बोध है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें विरासत में मिलता है।
ओ वाओ, मतलब एक तरह से हम सब जन्म से ही मुजरिम हो गए।
बिल्कुल। और इस एक गलती से ओरिजिनल सिन या जन्मजात दोष का वो सिद्धांत पैदा हुआ जिसने मतलब सदियों तक पश्चिमी विचारधारा को आकार दिया।
लेकिन हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि असली ग्रीक अर्थ कुछ और ही था, है ना? शुरुआती ग्रीक विद्वान जैसे कि ओरिजिन, वो तो इस बात को बिल्कुल अलग तरह से समझते थे।
हाँ, ओरिजिन और अन्य ग्रीक विद्वानों की समझ बिल्कुल अलग थी, क्योंकि मूल ग्रीक शब्द एक्फो था, जिसका सही अर्थ क्योंकि होता है।
क्योंकि मतलब जिसमें नहीं बल्कि क्योंकि।
सही पकड़े। इसका मतलब है मृत्यु इसलिए पूरी दुनिया में फैली क्योंकि सभी ने पाप किया। ये किसी विरासत में मिले दोष की बात नहीं है, ये इस बात का वर्णन है कि पूरी मानवता ईश्वर से अलग हो गई।
तो इसका मतलब हम आदम का पाप ढो के पैदा नहीं होते?
नहीं, आदम के कारण दुनिया में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा अलगाव आ गया जहां हर व्यक्ति पाप के प्रति संवेदनशील हो गया। हम आदम का अपराध बोध में ही ढोते, बल्कि हम आदम की तरह ही एक टूटे हुए समाज में जन्म लेते हैं और फिर हम खुद भी पाप करते हैं।
ये तो बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ आप जन्म से ही मुजरिम हैं और दूसरी तरफ मतलब आप एक ऐसी बीमार दुनिया में पैदा हुए हैं जहां आप भी अंततः बीमार पड़ी जाते हैं।
बिल्कुल। और जब हम आदम की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर कीनर के लेक्चर में यहूदी परंपरा का एक बहुत ही शानदार जिक्र है। पहली सदी के यहूदी साहित्य में आदम को लेकर बहुत सी धारणाएं थी। यहां तक कहा गया है कि पाप करने से पहले आदम की एड़ी सूरत से भी ज्यादा चमकती थी।
सूरत से भी ज्यादा? ये तो बहुत ही दिलचस्प कल्पना है।
हाँ, यहूदी परंपराओं में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आदम ने पाप के कारण वह असीम महिमा खो दी। और यहीं पर पॉल, जो रोमियो की किताब के लेखक हैं, वो एक नई तरह की तुलना पेश करते हैं।
वो आदम और मसीह की तुलना, राइट?
हाँ, वे अपना तर्क अब्राहम से हटाकर सीधे आदम और मसीह की तुलना पर ले जाते हैं। वे कावा ओमेर नामक एक प्राचीन यहूदी अलंकार का उपयोग करते हैं।
कावा ओमेर?
हाँ।
इसका मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना होता है ना?
एकदम सही, छोटे से बड़े की ओर। पॉल का तर्क ये है कि यदि एक व्यक्ति यानी आदम, उसकी अवज्ञा का प्रभाव इतना विनाशकारी हो सकता है कि पूरी दुनिया में मृत्यु फैल गई,
तो दूसरे व्यक्ति का प्रभाव कितना बड़ा होगा?
बिल्कुल, सोचिए कि दूसरे व्यक्ति यानी मसीह की आज्ञाकारिता का प्रभाव कितना अधिक शक्तिशाली और महान होगा, जो उस खोई हुई महिमा को वापस लाएगा।
इसे समझने के लिए अगर हम एक एनालॉजी लें, मान लीजिए कि एक वायरस ने एक बहुत बड़े ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क को करप्ट कर दिया।
हाँ, एक बहुत ही सटीक एनालॉजी हो सकती है।
तो वह वायरस आदम का प्रतिनिधित्व करता है जिसने पूरे सिस्टम को धीमा और बेकार कर दिया। लेकिन फिर कोई एक पूरी तरह से नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है। ये नया सिस्टम न सिर्फ उस पुराने वायरस को खत्म कर देता है, बल्कि नेटवर्क की स्पीड और क्षमता को पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ा देता है।
बिल्कुल, और वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम मसीह का काम है।
लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ही शक्तिशाली है और आदम के वायरस से कहीं बड़ा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अंततः दुनिया के हर एक कंप्यूटर को ये अपडेट मिल जाएगा?
आप यूनिवर्सलिज्म की तरफ इशारा कर रहे हैं?
हाँ, क्या अंत में दुनिया के हर एक व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा? क्या स्रोत सामग्री इस बारे में कुछ कहती है?
हाँ, स्रोत सामग्री इस पर बहुत गहराई से विचार करती है। डॉक्टर कीनर स्पष्ट करते हैं कि यह तुलना वास्तव में एक तरफा है। ऐसा नहीं है कि ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम सब पर अपने आप लागू हो जाएगा।
अच्छा, तो फिर ये काम कैसे करता है?
लाभ केवल उन्हें मिलता है जो मसीह में है, ठीक वैसे ही जैसे नुकसान होने हुआ था जो आदम में थे। यहाँ मुख्य शब्द है एकजुटता।
एकजुटता?
हाँ, आदम के साथ मानवता की एकजुटता जन्म और उस टूटी हुई दुनिया का हिस्सा होने से है, लेकिन मसीह के साथ एकजुटता के लिए एक चुनाव की आवश्यकता होती है। पॉल यहाँ सबका उद्धार होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि समाधान पूरी तरह से सक्षम है, बस व्यक्ति को उस नए सिस्टम में प्रवेश करना होगा।
समझ गई। लेकिन अगर मसीह का समाधान ही असली और अंतिम अपडेट था, तो फिर सदियों तक यहूदी समाज में मूसा के नियमों का, मतलब मोज़ेक लॉ का क्या काम था?
ये बहुत ही तार्किक सवाल है जो रोमियो के अध्याय 5 के अंत में उठता है।
हाँ, क्योंकि अगर इंसान को बचाने के लिए नए ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जरूरत थी, तो बीच में ये भारी भरकम नियमों की किताब क्यों लाई गई?
देखो, नियम या कानून कभी भी पाप को जड़ से खत्म करने या इंसान को बचाने के लिए नहीं बनाए गए थे। स्रोत सामग्री बताती हैं कि नियम का काम केवल पाप को उजागर करना था। नियम ने पाप को मापने योग्य बना दिया।
मतलब नियम के आने से पहले भी पाप था?
बिल्कुल। डॉक्टर कीनर बताते हैं कि नियम के आने से बहुत पहले ही दुनिया में पाप और मृत्यु मौजूद थे।
हाँ, और जीवाश्म विज्ञान और पुरातत्व के साक्ष्य भी तो यही साबित करते हैं कि मृत्यु लाखों सालों से इस धरती पर है। मृत्यु केवल तब शुरू नहीं हुई जब मूसा ने सिनाई पर्वत पर नियम लिखे।
एकदम सही। नियम ने केवल उस समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। जब नियम नहीं था तब भी लोग गलत काम कर रहे थे, लेकिन नियम ने आकर कहा, तुमने नियम संख्या 4 तोड़ा है।
ओ, तो ये एक डायग्नोस्टिक टूल बन गया।
हाँ, इसने इंसान की अंतरात्मा के अस्पष्ट अपराध बोध को एक स्पष्ट कानूनी उल्लंघन में बदल दिया। लेकिन समस्या यह थी कि यह नियम प्राकृतिक कानून से कहीं अधिक स्पष्ट तो था, पर यह इंसान के अंदर के हृदय को नहीं बदल सकता था।
ये तो बिल्कुल एक थर्मामीटर की तरह काम कर रहा था।
थर्मामीटर? कैसे?
मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार है। थर्मामीटर ये तो सटीक रूप से बता सकता है कि बुखार 102 डिग्री है या 104 डिग्री। वो बीमारी को माप सकता है, उसे स्पष्ट कर सकता है।
हाँ, ये तो है।
लेकिन दुनिया का कोई भी थर्मामीटर उस बुखार को ठीक नहीं कर सकता। इलाज के लिए तो दवा की जरूरत होती है। नियम सिर्फ वो थर्मामीटर था।
ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। नियम ने इंसानियत का तापमान नापा और बता दिया कि बीमारी बहुत गंभीर है। वास्तविक परिवर्तन के लिए हृदय के स्तर पर पूरी तरह से रूपांतरण के लिए एक नए तरीके की आवश्यकता थी।
और यहीं से ये सवाल पैदा होता है कि अगर नियम इंसान को ठीक नहीं कर सकता, तो फिर कोई व्यक्ति उस मसीह में नई पहचान का हिस्सा कैसे बनता है?
सही कहा। और ये हमें रोमियो के अध्याय 6 और बपतिस्मा के विषय की ओर ले जाता है।
तो पहली सदी के लोग अपना ये इलाज कैसे कर रहे थे? स्रोत सामग्री में बपतिस्मा के ऐतिहासिक संदर्भ को बहुत ही रोचक ढंग से समझाया गया है ना?
बिल्कुल। उस समय यहूदी धर्म में अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर नई पहचान अपनाने का एक बहुत ही भौतिक तरीका था, मिकवा।
मिकवा मतलब वो बहते पानी का कुंड जिसमें पूरी तरह डूबकर स्नान किया जाता था।
हाँ, धर्म परिवर्तन की ये पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। पहली सदी में जब कोई अन्य जाति का व्यक्ति यहूदी धर्म अपनाता था, तो वो ये केवल कुछ नई मान्यताओं को दिमाग में स्वीकार कर लेना नहीं था।
तो फिर क्या था?
ये एक पूरी तरह से नई सामाजिक और आध्यात्मिक पहचान अपनाना था। उस व्यक्ति का अपने पुराने परिवार, अपनी पुरानी जाति और अपने पुराने देवताओं से नाता कानूनी और सामाजिक तौर पर टूट जाता था। पानी में डूबकर निकलना एक तरह से पुराने जीवन की मृत्यु और एक नए व्यक्ति के जन्म का प्रतीक था।
ओ वाओ। और यहाँ डॉक्टर कीनर ने एक बहुत ही मजेदार रब्बी किस्से का उल्लेख किया है, जो इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है कि लोग इस नई पहचान को कितना सच मानते थे।
आप उस गुलामों वाले किस्से की बात कर रही हैं?
हाँ, जब रोमन मालिक अपने गुलामों को यहूदी धर्म में परिवर्तित करते थे, तो वे उन्हें रस्सियों से बांधकर पानी में डुबोते थे।
बिल्कुल, और क्या बता सकती हैं कि वे ऐसा क्यों करते थे?
क्योंकि उन्हें डर होता था कि अगर ये गुलाम इस पानी में डूबकर सच में एक नया इंसान बनकर बाहर निकला तो पुरानी पहचान खत्म हो जाएगी, और अगर वो पुराना व्यक्ति मर गया है तो नया व्यक्ति कानूनी रूप से आजाद माना जा सकता है।
बिल्कुल सही, इसलिए वे रस्सियों का इस्तेमाल करते थे ताकि ये साबित कर सकें कि पानी से बाहर आने वाला व्यक्ति अभी भी बंधा हुआ है और उनका गुलाम ही है।
मतलब ये कहानी दर्शाती है कि समाज में बपतिस्मा को लेकर कितनी गहरी धारणा थी। ये केवल एक रस्म नहीं थी, इसके व्यवहारिक, सामाजिक और कानूनी परिणाम हो सकते थे।
एकदम सही, और पॉल इसी अवधारणा को उपयोग ये समझाने के लिए करते हैं कि मसीह के साथ जुड़ने का मतलब क्या है। बपतिस्मा पुराने जीवन की समाप्ति और मसीह के साथ नए जीवन की शुरुआत का एक दृश्यमान प्रतीक था।
डॉक्टर कीनर इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी देते हैं, सगाई की अंगूठी की।
हाँ, वो अंगूठी वाली एनालॉजी बहुत प्रभावशाली है।
पानी अपने आप में कोई जादुई चीज नहीं है जो पाप धो देता है। जिस तरह सगाई की अंगूठी खुद में शादी नहीं होती, लेकिन वह इस बात का एक सार्वजनिक प्रतीक होती है कि दो लोगों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की प्रतिबद्धता की है।
बिल्कुल, अंगूठी उस अंदरूनी फैसले का बाहरी सबूत है।
वैसे ही बपतिस्मा उस आंतरिक विश्वास और नई पहचान का बाहरी प्रतीक है।
हाँ, और अगर हम इसके ऐतिहासिक पहलू को देखें तो यहाँ एक मिथक का खंडन करना भी जरूरी है जिस पर स्रोत सामग्री काफी बात करती है।
कौन सा मिथक?
20वीं सदी के मध्य में एक विचार बहुत लोकप्रिय हुआ था कि ईसाई धर्म ने इस मरने और जी उठने की कहानी अन्य प्राचीन रहस्यवादी धर्मों से चुराई है। उन धर्मों में ऐसे देवताओं की कथाएं थीं जो मरते थे और फिर जीवित हो जाते थे।
ओ हाँ, वो डाइंग एंड राइजिंग गॉड्स वाला सिद्धांत, ये तो अक्सर इंटरनेट पर पढ़ने को मिल जाता है।
लेकिन स्रोत सामग्री इस मिथक का बहुत मजबूती से खंडन करती हैं। वे रहस्यवादी धर्म वास्तव में प्रकृति और मौसम के चक्रों पर आधारित थे।
मौसम के चक्र मतलब जैसे खेती बाड़ी?
बिल्कुल, जैसे सर्दियों में वनस्पति सूख जाती है मानो मर गई हो, और वसंत ऋतु में बारिश के बाद वो दोबारा जी उठती है। वे प्राकृतिक चक्रों की पूजा थीं। लेकिन पॉल जिस पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं वो मौसम या खेतीबाड़ी से नहीं जुड़ा है।
तो फिर वो किस पर आधारित है?
यह शारीरिक पुनरुत्थान की यहूदी अवधारणा पर आधारित है। यह इतिहास में हुई एक वास्तविक घटना मसीही के क्रूस पर मरने और फिर से जीवित होने पर आधारित है, न कि किसी वसंत ऋतु के मिथक पर।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक उलझन पैदा होती है।
वो कैसे?
मान लीजिए किसी ने वो सगाई की अंगूठी पहन ली है, उसे वो नई पहचान मिल गई है, पानी में डुबकी भी लगा ली है, लेकिन असल जिंदगी में वो इंसान फिर भी पुरानी गलतियां करता है, उसका दिमाग अभी भी पुराने तरीके से सोचता है।
हाँ, ये एक बहुत ही आम अनुभव है।
तो नई पहचान मिलने के बाद भी पुरानी आदतें क्यों नहीं जाती?
स्रोत सामग्री यहाँ क्या है और क्या होना चाहिए, मतलब इंडिकेटिव और इम्परेटिव के बीच के तनाव की बात करती है, राइट?
ये रोमियो की किताब का शायद सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। देखो, ईश्वर की नजर में वो व्यक्ति एक नई रचना बन चुका है, ये इंडिकेटिव है, यानी यह वह सत्य है जो घटित हो चुका है।
ओके, सत्य घटित हो चुका है, लेकिन इंसान के दिमाग की जो वायरिंग है, उसकी जो यादें और शरीर की आदतें हैं, वे अभी भी उस पुराने व्यवहार में फंसी हुई हैं। इसलिए पॉल उस व्यक्ति को आदेश देते हैं कि वो अपनी इस नई पहचान के अनुसार जिएं।
और यही इम्पेरेटिव है।
बिल्कुल, पुरानी आदतें तुरंत नहीं जाती, इसलिए सोच को लगातार उस नए सत्य के अनुरूप ढालना पड़ता है।
स्रोत सामग्री में ओरिजिन नामक एक प्राचीन ग्रीक टिप्पणीकार का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण भी तो है।
हाँ, वो काफी व्यवहारिक उदाहरण है।
ओरिजिन कहते थे कि जब भी उनके मन में कोई लालच, वासना या कोई गलत विचार आता था तो वो खुद को बस एक बात याद दिलाते थे, मैं मसीह के साथ मर चुका हूँ। और उनका दावा था कि केवल ये याद दिलाना उस पाप की इच्छा को तुरंत शांत कर देता था।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है।
लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा विरोध दर्ज करना होगा।
अच्छा, बताइए।
क्या ये सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल नहीं लग रहा है, जैसे आज के जमाने में लोग साइकोलॉजिकल थेरेपी में करते हैं या फेक इट टिल यू मेक इट का मंत्र जपते हैं?
मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं।
प्राचीन स्टोइक दार्शनिक भी तो लगभग यही करते थे, है ना? वे अपने दिमाग को नियंत्रित करते थे, अपनी भावनाओं को दबाते थे। तो फिर पॉल की इस बात में और स्टोइक दर्शन में अलग क्या है?
ये समानता सतह पर बहुत वास्तविक लगती है, लेकिन डॉक्टर कीनर स्पष्ट करते हैं कि इनमें एक बहुत बुनियादी अंतर है,
स्टोइक दार्शनिक अपनी मानसिकता को अपनी खुद की दिमागी मेहनत, अपने संकल्प और मानव तर्क के प्रयासों से बदलते थे।
मतलब वो सब अपने दम पर कर रहे थे।
बिल्कुल, वे भावनाओं से खुद को अलग करने की कोशिश करते थे। लेकिन पॉल जिस चीज की बात कर रहे हैं वो इंसान के खुद के प्रयासों से पैदा हुई कोई मनोवैज्ञानिक चाल नहीं है, वे एक अलौकिक सच्चाई की बात कर रहे हैं।
अलौकिक सच्चाई मतलब ये सेल्फ हेल्प नहीं है?
एकदम नहीं। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं मसीह के साथ मर चुका हूं, तो वो खुद को धोखा नहीं दे रहा है या कुछ ऐसा बनने की कोशिश नहीं कर रहा है जो वो नहीं है, बल्कि वो उस वास्तविकता को स्वीकार कर रहा है जिसे ईश्वर ने पहले ही तय कर दिया है।
ओ, तो ये अपने दम पर नई पहचान बनाने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि ईश्वर की दृष्टि में आप पहले से ही क्या बन चुके हैं।
यही सबसे बड़ा अंतर है, एक में मेहनत है और दूसरे में विश्राम।
आहा, मतलब ये अपनी पहचान खुद गढ़ने का थकाऊ संघर्ष नहीं है, बल्कि दी गई पहचान में आराम से बसने की बात है।
बिल्कुल सही।
तो इस पूरी नई मानसिकता को अपनाने का अंतिम परिणाम क्या होता है? यह हमें रोमियो 6 के अंतिम भाग की ओर ले जाता है, जहां पॉल रोमन गुलामी और आजादी के विषय पर बात करते हैं, पाप की मजदूरी और मुफ्त उपहार के बीच का महान विरोधाभास।
रोमन गुलामी की व्यवस्था को समझना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उस तरह की गुलामी से काफी अलग थी जिसे हम 18वीं या 19वीं शताब्दी के अमेरिकन इतिहास में देखते हैं।
वो कैसे अलग थी?
रोमन साम्राज्य में कई गुलामों के पास कुछ सीमित अधिकार होते थे। वे अपना खुद का पैसा या संपत्ति बचा सकते थे, जिसे पिक्यूलियम कहा जाता था। वर्षों तक तांबे के सिक्के बचाकर वो एक दिन उस पैसे से खुद की आजादी खरीद सकते थे।
मतलब ये एक पूरी तरह से लेन देन वाली व्यवस्था थी जहां स्वतंत्रता कमानी पड़ती थी।
बिल्कुल, और यहीं पर पॉल उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो रोम के लोगों के लिए बहुत गहरे अर्थ रखते थे। वे मजदूरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
मजदूरी, हाँ।
स्रोत के अनुसार ग्रीक में यह शब्द ऑप्सोनिया है, जो वास्तव में सेना में सैनिकों को दिए जाने वाले वेतन या भत्ते के लिए इस्तेमाल होता था। मतलब मजदूरी वो चीज है जिसे आपने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया है।
और पॉल कहते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है।
सही, यानी मृत्यु कोई दुर्घटना या अन्याय नहीं है, यह वो चीज है जिसे इंसान ने अपने पापों के माध्यम से पूरी तरह से कमाया है।
और इसी कमाए हुए वेतन के बिल्कुल विपरीत पॉल दूसरी बात कहते हैं, ईश्वर का उपहार पूरी तरह से मुफ्त है।
हाँ, इसके लिए वे 40 शब्द का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ अनुग्रह है। प्राचीन रोम में संरक्षक और आश्रित की एक संस्कृति थी। जब कोई बड़ा संरक्षक कोई उपहार देता था तो वह बिना किसी कीमत के होता था, आश्रित उसे कभी कमा नहीं सकता था। तो पाप आपको वो देता है जिसके आप हकदार हैं, जो आपने कमाया है, लेकिन ईश्वर आपको वो देता है जिसे आप कभी अपने प्रयासों से हासिल नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से अनर्जित है।
बिल्कुल, इसे आज के आधुनिक संदर्भ में समझने के लिए एक और एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए पाप एक ऐसी क्रूर कॉर्पोरेट कंपनी है जहां इंसान दिन रात काम करता है, अपना पूरा जीवन खपा देता है, ओवरटाइम करता है।
हाँ, और फिर?
और जब रिटायरमेंट का समय आता है तो उसे पेंशन के रूप में मौत का चेक थमा दिया जाता है, क्योंकि कंपनी के नियमों के हिसाब से उसने जिंदगी भर यही कमाया है।
ये तो बहुत ही डरावनी कंपनी है,
है ना? लेकिन दूसरी तरफ ईश्वर का अनुग्रह एक ऐसा विशाल ट्रस्ट फंड है जिसमें उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी पैसा नहीं डाला, उसने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, कोई पसीना नहीं बहाया, लेकिन फिर भी एक दिन वह ट्रस्ट फंड पूरी तरह से उसके नाम कर दिया जाता है और वो व्यक्ति जीवन भर के लिए उसका हकदार बन जाता है।
और यही बात इस पूरे दर्शन को आज के समाज के लिए इतना प्रासंगिक बनाती है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हर कोई अपनी पहचान बनाने, उसे साबित करने और समाज में अपनी जगह कमाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है।
हाँ, लोग सोशल मीडिया से लेकर अपने करियर तक सब कुछ बस अपनी अहमियत साबित करने के लिए कर रहे हैं।
बिल्कुल, लोग अंदर से थके हुए हैं। ऐसे में ये प्राचीन विचार बहुत ही मनोवैज्ञानिक राहत देने वाला है कि आपकी जो सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण पहचान है वो आपको कमानी नहीं पड़ती है, उसे केवल एक उपहार की तरह स्वीकार करना होता है।
पहचान बनाने का वो थकाऊ काम पहले ही कोई और पूरा कर चुका है।
सही कहा।
और ये हमें आज के इस गहरे विश्लेषण के अंतिम पड़ाव तक ले आता है। हमने देखा कि कैसे ऑगस्टिन के लैटिन अनुवाद की एक गलती ने सदियों तक लोगों की सोच को प्रभावित किया, कैसे मूसा के नियम केवल एक थर्मोमीटर की तरह काम करते हैं जो बीमारी बता सकता है पर ठीक नहीं कर सकता,
और कैसे पहली सदी का बपतिस्मा एक सगाई की अंगूठी की तरह प्रतिबद्धता का प्रतीक था।
हाँ, और अंततः कैसे हमें अपनी नई पहचान को अपनी दिमागी मेहनत से नहीं बल्कि सिर्फ एक मुफ्त ट्रस्ट फंड की तरह स्वीकार करना है। लेकिन जाने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर वे खुद सोच सकें। ये विचार आज की स्रोत सामग्री से ही प्रेरित है।
वो क्या है?
जरा सोचिए, अगर ये सच है कि वो ट्रस्ट फंड आपके नाम हो चुका है, पहचान पूरी तरह से बदल चुकी है और ईश्वर आपको एक बिल्कुल नए इंसान के रूप में देखता है, तो क्या अपने पुराने पापों पर बार बार पछतावा करना, उस पुराने अपराध बोध को छाती से लगाए रखना, कहीं उस मुफ्त उपहार का अपमान करने जैसा तो नहीं है?
ये एक बहुत ही गहरा सवाल है।
अगर नई पहचान मुफ्त में मिल चुकी है, तो क्या अभी भी उस क्रूर कंपनी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर रोना समझदारी है? इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और गहराई में उतरते रहिए।